एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। खुदावन मेरी कुवत और मेरा गीत है।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों से सीखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे वचन से आशीषित कर हमारे मनों को खोल दे। विशेषकर मेरे श्रोतागणों के संग हो पिता, उन्हें तू बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो। तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला और तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझे मदद कर कि मैं तेरे वचनों को सही सलामत बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। आज के संवाद का शीर्षक है विश्वास और स्वीकृति। जब आपका अंतकरण पवित्र आत्मा द्वारा जागृत किया गया है तो आपने पाप की बुराई को, पाप की ताकत को, इससे होने वाले गलानी और इससे होने वाले दुखों को कुछ हद तक देख लिया है और अब आप पाप को घृणा की नज़र से देखते हैं। आप महसूस करते हैं कि पाप ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है और आप बुराई की शक्तियों के गुलाम बन गए हैं। जितना अधिक आप इससे बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आप अपने आप को बेबस और लाचार अवस्था में पाते हैं। आपके उद्देश्य अशुद्ध हैं, आपका मन मलिन है, आप देखते हैं कि आपका जीवन स्वार्थ और पाप से भरा हुआ है। आप माफी पाना, शुद्ध होना और स्वतंत्र होना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ तालमेल, उसकी समानता को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऐसी दशा में आप शांति, आत्मा में स्वर्गीय क्षमा और शांति और प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। इसे धन से नहीं खरीदा जा सकता है, बुद्धि के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप अपने प्रयासों से इसे पाने की आशा नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर इसे आपको उपहार स्वरूप देना चाहता है। बिन रुपये और बिना दाम की आकर ले लो, यह निमंत्रण यशायाह 55:1 में मिलता है। यह तो आपकी ही है, आपको तो केवल अपना हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ लेना है। प्रभु कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यशायाह 1:18। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। एजिकेल 36:26। जब आपने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और अपने पापों को अपने दिल से दूर कर दिया है, आपने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने की प्रतिज्ञा कर ली है, अब उसके पास आकर उसे विनती करें कि आपके पापों को धोकर आपको एक नया हृदय प्रदान करे। तब विश्वास कीजिए कि वह अवश्य ही ऐसा करेगा, क्योंकि उसने ऐसा करने का वायदा किया है। यही पाठ प्रभु ने इस पृथ्वी पर रहते समय हमें सिखाया था कि जो उपहार देने का परमेश्वर वादा करता है हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें मिल गया है और मिल जाएगा। यीशु ने उन लोगों को बीमारियों से चंगा किया जब उन्होंने चंगा करने की उसकी सामर्थ पर भरोसा किया। जो कुछ वे देख सकते थे उन बातों में परमेश्वर ने उनकी मदद की। इस प्रकार से जो कुछ वे नहीं देख सकते थे उनके विषय में उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, ताकि वे पाप क्षमा करने की उसकी शक्ति पर भरोसा कर सकें। उसने जब झोले के मारे हुए व्यक्ति को चंगा किया तो उसने इस बात को साफ तौर से बता दिया, इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मत्ती 9:6। इसी प्रकार यूहन्ना प्रचारक भी कहता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31। एक बीमार को चंगा करने के साधारण से कार्य से हम यह समझ सकते हैं कि पापों की क्षमा के लिए प्रभु के ऊपर किस प्रकार से विश्वास करना चाहिए। आइए हम बेतसदा के कुंड के पास पड़े हुए उस अपाहिज की कहानी पर ध्यान दें। यह बेचारा रोगी लाचार था। 38 वर्षों से उसने अपने हाथ पांव से कोई काम नहीं लिया था, फिर भी जब यीशु ने आदेश दिया, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, वह बीमार कह सकता था, हे प्रभु, यदि तू पहले मुझे अच्छा कर दे तो मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। परंतु उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मसीह की बात पर विश्वास किया और चंगा हो गया तथा एकदम से हाथ पांव चलाने लगा। उसने चलने की इच्छा की और सचमुच चलने लगा। उसने मसीह के वचन पर अमल किया, परमेश्वर ने उसे ताकत दी और वह चंगा हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप भी पापी हैं। आप अपने पिछले पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। आप अपने हृदय को बदलकर पवित्र नहीं बना सकते, परंतु परमेश्वर मसीह के द्वारा आपके लिए यह सब कुछ करने को तैयार है। आप उसके वायदों पर विश्वास कीजिए। आप एक काम करें, अपने पापों को स्वीकार करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। आप उसकी सेवा करने की इच्छा कीजिए। जैसा ही आप ऐसा करेंगे वैसा ही परमेश्वर भी अपने वचन को पूरा करेगा। जब आप उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, यह विश्वास कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं और आपका मन शुद्ध हो चुका है, परमेश्वर प्रमाण प्रदान करेगा। आप वैसे ही चंगे हो गए हैं जिस प्रकार से मसीह ने उस लकवे के रोगी को उस समय चलने फिरने की ताकत दी जब उसने विश्वास किया कि वह अच्छा हो चुका था। आप भी आत्मिक रूप से चंगे हो जाएंगे यदि आप उस पर विश्वास करेंगे। यह महसूस करने के लिए प्रतीक्षा ना करें कि आपको चंगाई मिल गई है, बल्कि कहिए, मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा ही होगा। इसलिए नहीं कि मैं महसूस कर रहा हूं, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे चंगा करने की प्रतिज्ञा की है। यीशु कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। निसंदेह इस प्रतिज्ञा में एक शर्त भी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, परंतु परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह हमें पापों से शुद्ध करे, हमें अपनी संतान बनाए और पवित्र जीवन बिताने में हमारी मदद करे। इसलिए हम इन आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रतीति करें कि हमें वे मिल जाएंगी, और यह विश्वास करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वे हमें मिल गई हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु के पास आकर शुद्ध हो जाएं और व्यवस्था के सामने बिना लज्जा और बिना ग्लानि के खड़े हो सके। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। रोमियो 8:1-2। अब से आप अपने नहीं रहे, आप कीमत देकर खरीदे गए हैं। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यह हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 1:18-19, इसमें यह प्रतिज्ञा मिलता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के इस साधारण से कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में एक नए जीवन का निर्माण कर दिया है। आप एक नवजात शिशु की तरह परमेश्वर के परिवार में पैदा हो गए हैं। वह आपसे ठीक वैसा प्रेम करता है जैसा वह अपने प्रिय पुत्र से प्रेम करता है। अब चूंकि आपने अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दिया है, तो पीछे मत हटिए, अपने आप को उसे अलग ना कीजिए, परंतु प्रतिदिन यह कहिए, मैं मसीह का हूँ, मैंने स्वयं को उसके हाथों में समर्पित कर दिया है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्राप्त करने और उसके अनुग्रह के द्वारा आपकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने आप को परमेश्वर को दे देने से और उस पर विश्वास करने से आप उसकी संतान बन गए हैं, इसलिए आपको अब उसी में जीवन बिताना है। प्रेरित पौलुस कहता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कुलुसियों 2:6। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ समय तक उन्हें परिवीक्षा पर रखा जाएगा और इससे पहले परमेश्वर की आशीषों की मांग करें, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे सुधर गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे अभी और इसी स्थिति में भी परमेश्वर की आशीषों की मांग कर सकते हैं। बुराइयों का सामना करने और अपनी कमजोरियों के ऊपर जयवंत होने के लिए उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु के आत्मा की सहायता की जरूरत होगी। यीशु मसीह को यह पसंद है कि हम अपनी वर्तमान पापी असहाय और पराधीन दशा में उसके समीप आए। हम अपनी सारी दुर्बलता, मूर्खता और अधम के साथ आकर यीशु के कदमों में पश्चाताप करते हुए गिर पड़े। तब उसकी महिमा हमें अपनी बाहों में जकड़कर हमारे सारे घावों पर मरहम पट्टी करके सारी बुरी भावनाओं से शुद्ध व साफ कर देगी। इसी जगह पर हजारों लोग असफल रह गए हैं। वे इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि यीशु उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्षमा करता है। वे परमेश्वर की बातों पर अक्षरश विश्वास ही नहीं करते। जो लोग स्वर्गीय शर्तों को पूरा करते हैं, यह जानना उनका सौभाग्य है कि परमेश्वर प्रत्येक प्रकार के पाप को सेंटमेंट में और पूरी तरह से क्षमा करता है। आप इस भ्रम को दूर कर दीजिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके लिए नहीं हैं। वे पश्चाताप करने वाले प्रत्येक पापी के लिए हैं, विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सेवा करने वाले स्वर्गदूतों के द्वारा मसीह का अनुग्रह और सामर्थ भरपूरी के साथ प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नीच या घृणित नहीं है कि उसे प्रभु यीशु से, जिसने उनके लिए अपने प्राण दे दिए, शक्ति, पवित्रता और धार्मिकता प्राप्त ना हो सके। प्रभु तो इस इंतजार में बैठा है कि उनके पाप की कीचड़ में लतपत सने गंदे कपड़े उतार कर उन्हें अपनी धार्मिकता की सफेद पोशाक पहनाएं। वह उन्हें मरने के लिए नहीं, परंतु जीवित रहने के लिए अपने पास बुलाता है। परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा बर्ताव मनुष्य एक दूसरे के साथ करते हैं। उसमें दया, प्रेम और कोमल सहानुभूति के विचार हैं। वह कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यशायाह 55:7। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। यह प्रतिज्ञा हम यशायाह 44:22 में पाते हैं। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। इजेकियल 18:32। शैतान परमेश्वर के धन्य आश्वासन को चुरा ले जाने के लिए तैयार रहता है। वह आत्मा में से आशा और ज्योति की प्रत्येक किरण को मिटा देने की कोशिश करता है, परंतु आप उसे ऐसा ना करने दे। प्रतीक्षा में डालने वाले शैतान की आप एक ना सुने, बल्कि या कहें यीशु ने अपनी जान दे दी ताकि मैं जीवित रहूं। वह मुझको प्यार करता है और नहीं चाहता है कि मैं नाश हो जाऊं। यद्यपि मैंने उसके प्रेम का दुरुपयोग किया है, जो आशीषें उसने दी हैं उनको गलत तरीके से उड़ा दिया है, फिर भी मेरा स्वर्गीय पिता मेरे प्रति बड़ा दयालु है। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाकर उसे कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। यह दृष्टांत यह बतलाता है कि उड़ाव पुत्र का किस प्रकार स्वागत हो सकता है। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। यह हम पढ़ते हैं लुका 15 का 18 और 20 में। यह दृष्टांत यद्यपि कोमल और मन को छू लेने वाला है, फिर भी यह स्वर्गीय पिता की असीम ममता और वात्सल्य को जाहिर करने में असमर्थ है। अपने भविष्यवक्ता द्वारा परमेश्वर यह घोषित करता है, मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यिर्मयाह 31 का 3। जब पापी पिता के घर से अभी दूर ही है, अपनी धन संपत्ति को परदेश में उड़ा रहा है, उस समय पिता का हृदय उसके लिए व्याकुल हो उठता है और परमेश्वर के पास लौट आने के लिए उस पापी का हृदय व्याकुल होने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे उसके पिता के घर की ओर खींच रहा है। बाइबल की इतनी बेशकीमती प्रतिज्ञाओं के सामने भी क्या आप संदेह करेंगे? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जब बेचारा पापी प्रभु की ओर लौटने की इच्छा करता है, अपने पापों को छोड़ देना चाहता है और पश्चाताप के साथ पिता के कदमों में आना चाहता है, तो परमेश्वर उसको अपने निकट नहीं आने देगा? ऐसे विचारों से दूर रहिए। स्वर्गीय पिता के प्रति ऐसी धारणा रखने से आप अपने आप को सबसे बड़ी चोट पहुंचाएंगे। वह पाप से नफरत करता है, परंतु पापी को प्यार करता है। उसने अपने आप को मसीह में होकर इसलिए दे दिया ताकि जो चाहे मुक्ति प्राप्त करे और उसके वैभवशाली राज्य में अनंत आनंद पाए। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए इससे बढ़कर कोमल कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकता है? वह घोषित करता है, क्या कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है कि अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर यह वचन देते हैं, लिखा है यशायाह 49 का 15 में। संदेह में पड़े हुए और लड़खड़ाते हुए लोग ऊपर की ओर देखें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ का कार्य कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अपना प्रिय पुत्र बलिदान स्वरूप दे दिया, और प्रार्थना करें कि उसका यह बलिदान व्यर्थ न जाए। आज पवित्र आत्मा आपको आमंत्रित करता है, संपूर्ण हृदय के साथ यीशु के पास आइए और उसकी आशीषें प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के समीप आते हैं, तो परमेश्वर भी दया दिखाते हुए और क्षमा करते हुए आपके समीप आते हैं। परमेश्वर आपके संग रहें और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बुलाया है, हम पापी मनुष्य को बुलाया है कि हम तेरे पास आए और तुझसे क्षमा प्राप्त करें। हम विश्वास करें कि तू हमें ग्रहण करता है और क्षमा करता है। हम इस प्रतिज्ञा को हम धरे पिता और तेरे पास आए। हम सबों को तू आशीष दे, विशेषकर मेरे सुनने वालों को तू बहुत आय से आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।